संबंध जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं उनका वर्णन आगे के दो श्लोकों में करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। व्याख्या: परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक प्रवर्तक शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं उन उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता है उनका भी जो ईश्वर है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव है, वो मेरा स्वरूप है। परम भावम, यह कहने का तात्पर्य है कि मेरे उत्कृष्ट प्रभाव को, अर्थात करने में न करने में और उलट पुलट करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म क्लेश विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है, तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, 15 का 18, ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसी से वे मुझे मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मानुषीम तनुमाश्रितम, भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर कुटुंब परिवार धन संपत्ति पद अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, शरीर कुटुंब आदि को इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं, और जैसे साधारण प्राणी अपने प्रकट नहीं थे बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मुझे भी साधारण मनुष्य मानते हैं, वे मुझे मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं। जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते, शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्मफल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं, इच्छया आत्मवपुष है, और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य कच्छप वराह आदि अवतार लेते हैं, इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया, वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूड लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित माने शरण मानते हैं। उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मुझे मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने सातवें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। 7:24-25। इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण होते हैं। 7:20। अवदानंति माम मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मुझे न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि है, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से जानते ही नहीं। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं। योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन तो अवश्य करेगा, अर्थात वो सत्य तो बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् सर्वलोक महेश्वरम् मत्तः परतरम् नान्यत् मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट इत्यादि इत्यादि। अतः अगर वे योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर हैं, ये मानना ही पड़ेगा।